ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। आगामी असोज 1 गत्ते से लंबी दूरी के सार्वजनिक सवारी साधन और आंतरिक हवाई उड़ाने होगी सुचारू। मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। आज काठमांडू घाटी में 298 सहित देशभर में 899 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। आज कोरोना संक्रमण के कारण 7 लोगों की हुई मौत। कालीकोट की नागमा में भूस्खलन के कारण लापता हुए लोगों के शव हुए बरामद। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आगामी असोज 1 गत्ते से आंतरिक हवाई उड़ान, अंतर जिला और लंबा दूरी के सवारी साधनों को संचालित करने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की आज की बैठक द्वारा किए गए निर्णय को साझा करने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ युवराज खतिवाड़ा ने यह जानकारी दी। मंत्रिपरिषद की बैठक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं महासभा में वर्चुअल माध्यम से सहभागी होने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इसी तरह सरकार ने विदेशों से दैनिक 800 नेपालियों को उद्धार करने का भी निर्णय किया है, लेकिन सऊदी अरब, कुवैत और कतार लगाए देशों से नियमित उड़ान के जरिए यात्रियों को नहीं लाया जाएगा, क्योंकि यहां पर पीसीआर परीक्षण का सहजता नहीं है। साथ ही सभी प्रदेश सरकार और स्थानीय तहों द्वारा संक्रमण के जोखिमों का मुआयना करने के बाद प्रदेश और जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन के केंद्र समन्वय में आइसोलेशन बेड का प्रबंध कर सकता है, जबकि काठमांडू घाटी में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने तथा बागमती प्रदेश सरकार और संबंधित स्थानीय तहों द्वारा आवश्यकता के आधार पर आइसोलेशन बेड का प्रबंध कर सकती है। सरकार ने विदेशी विद्यार्थियों का नेपाल की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने के लिए आने की भी अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए विदेशी विद्यार्थियों को 72 घंटों के अंदर का पीसीआर का रिपोर्ट, निगेटिव होने का प्रमाण पत्र और संबंधित शिक्षण संस्था में आवेदन या भर्ती होने का प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश में नेपाल आने की अनुमति दी जाएगी। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता डॉ खतिवाड़ा ने दी। बीरगंज में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के संक्रमितों का इलाज शुरू किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने पर संक्रमितों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ये जानकारी नारायणी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ नीरज सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद द्वारा तय किए गए मापदंड के अनुसार ही संक्रमितों का अनुसंधानात्मक इलाज शुरू किया गया है। अभी बीरगंज में कोरोना संक्रमण मुक्त हुए लोगों के विभिन्न रक्त समूहों की प्लाज्मा संकलन के लिए रक्त संचार केंद्र बीरगंज में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विभिन्न स्थानीय तहों ने लॉकडाउन और निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ाया गया है। झापा की कनकाई नगरपालिका नगर क्षेत्र में अनिश्चितकालीन लॉकडाउन करने का निर्णय किया है। ये जानकारी नगर प्रमुख राजेंद्र प्रसाद पोखरेल ने दी। इसी क्रम में महोतरी के 1 हफ्ते के लिए निषेधाज्ञा को बढ़ाया गया है। ये जानकारी महोतरी के प्रमुख जिला अधिकारी कृष्ण बहादुर कछुवाल ने दी। इसी तरह असम की 2 नगरपालिकाओं मंगल से नगरपालिका और साफे नगरपालिका को भी 1 हफ्ते के लिए पूर्ण रूप से सील किया गया है। आज देशभर में 899 लोगों में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,460 हो गई है, जबकि आज ही कोरोना संक्रमण के कारण 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, जबकि 588 कोरोना संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने दी। बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर करनाली प्रदेश की सरकार ने सभी 10 जिलों में सघन उपचार कक्ष और वेंटिलेटर की व्यवस्था की है। ये जानकारी सामाजिक विकास मंत्रालय ने दी है। इसी तरह प्रदेश अस्पताल में 10, करनाली विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में 6, दैले कालीकोट और हुमला में 2-2 तथा मुगू, रुकुम पश्चिम, सल्यान और जाजरकोट अस्पताल में 1-1 वेंटिलेटर की व्यवस्था की है। कपिलवस्तु की शिवराज नगरपालिका में स्थापित 30 सया वाली शिवराज आइसोलेशन सेंटर को आज से संचालित किया गया है। शिवराज नगर पालिका 5 की चंद्रौटा स्थित नलकूप में नवनिर्मित आइसोलेशन भवन का शुभारंभ प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन कुमार केसी ने किया। इस आइसोलेशन सेंटर का निर्माण प्रदेश सरकार और नगरपालिका के सहयोग में किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ
1498 फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्टपेनमा नि आयो
1498 फोन गर्नुस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेडको पुक नम्बर पनि चाहिए थियो,
त्यसको लागि पनि 1498 मै फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे जे सोध्न मन छ 1498 फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। दांग के राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर में आज से इमरजेंसी सेवा और प्रसूति सेवा को सुचारू किया गया है। गौरतलब है कि 2 डॉक्टरों सहित 9 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद भाद्र 13 गते से अस्पताल को सील किया गया था। इसी तरह मोहतरी की गौशाला नगर पालिका ने भी 30 बेड की प्राथमिक आइसोलेशन सेंटर की स्थापना की है। कंचनपुर की महेंद्र नगर स्थित महाकाली अस्पताल में आज से आईसीयू सेवा की शुरूआत की गई है। कालीकोट के तिला गुफा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 नगमा में हुए कल के भूस्खलन में दबने से लापता हुए 10 लोगों का शव बरामद किया गया है। सभी मृतकों की पहचान हो चुकी है, ये जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी चंद्र प्रसाद गैरे ने दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उद्धार कार्य खत्म हो चुका है और पीड़ितों को राहत वितरण का कार्य कल से किया जाएगा। गौरतलब है कि कालीकोट में असार से अब तक भूस्खलन के कारण 43 लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य 7 लोग लापता हैं। इसकी जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी गैरे ने दी। चितवन में करंट लगने से 2 लोगों का मौत हुई है। पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान के अनुसार भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 सल्यानी टोल में रहे माछा पोखरी में लगाए बिजली के बंसी में आए करंट से स्थानीय नवराज दराई और नीर बहादुर राणा मगर का मौत हो गया। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रवक्ता सूर्य बहादुर थापा ने दी। लगातार के बारिश की वजह से कुछ दिनों से हो रहे भूस्खलन से काठमांडू के शंकरापुर नगरपालिका 1 छाप भंजांग के 65 घर जोखिम में हैं। स्थानीय बासिंदा के अनुसार मिट्टी के 50 रोपनी जमीन धसने से बस्ती जोखिम में है। बता दें कि शंकरापुर नगरपालिका की जहर सिंह पौवा होते हुए सिंधुपाल चौक मेलमची जोड़ने वाली सड़क खंड की अवस्था भी बहुत ही दयनीय है, ये जानकारी स्थानीय ने दी। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई ने काठमांडू घाटी में 5 लाख पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन पूर्वाधार की तैयारी करने के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड को निर्देश किया है। आज मंत्रालय में पर्यटन बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ किए गए विचार विमर्श में मंत्री भट्टराई ने सार्वजनिक विदा के दिनों में 5 लाख पर्यटन काठमांडू घाटी में आते इसे मद्देनजर करते हुए पर्यटन पूर्वाधार पदमार्ग साइकिलिंग ट्रेल पर्यटन के संभावनाओं को अध्ययन कर मंत्रालय में प्रतिवेदन पेश करने का निर्देशन किया। दारचूला में 5 लोग स्क्रब टाइफस की बीमारी पाई गई है। महाकाली नगर पालिका के 1 पुरुष, मल्लिकार्जुन गांव पालिका की 2 महिलाएं और 1 पुरुष तथा ब्यास गांव पालिका के 1 पुरुष में स्क्रब टाइफस के संक्रमण देखा गया है, ये जानकारी जिला अस्पताल के डॉक्टर गजेंद्र दुआल ने दी। नेपाल विद्यार्थी संघ ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद सीटीभीटी से संचालित तालीम को खारिज करने के निर्णय पर विरोध किया है। आज नेवी संघ के अध्यक्ष राजीव ढुंगाना ने एक विज्ञप्ति जारी कर चिकित्सा शिक्षा संबंधी सीएएमए एएएनएम लैब असिस्टेंट लगायत सीएएसएलसी और एसी स्तर के 18 महीने स्वास्थ्य तालीम को खारिज करने का सीटीभीटी के निर्णय को गलत बताया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। वे पिछले हफ्ते से दिल्ली में सेना के R&R अस्पताल में भर्ती थे। वे मस्तिष्क में रक्त के एक धक्के के ऑपरेशन के लिए अस्पताल गए थे, जहां वो जांच में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। 10 अगस्त को उन्होंने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सर्जरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी कोमा में चले गए थे और R&R अस्पताल रोजाना उनके स्वास्थ्य की जानकारी दे रहा था। आज शाम 6:45 बजे के करीब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके उनकी मौत की पुष्टि की। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 2,54,53,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,77,61,000 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 8,51,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। आगामी असोज एक गते से लंबी दूरी के सार्वजनिक सवारी साधन और आंतरिक हवाई उड़ाने होगी सुचारू। मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। आज काठमांडू घाटी में 298 सहित देशभर में 899 संक्रमण के नए मामले आए सामने। आज कोरोना संक्रमण के कारण 7 लोगों की हुई मौत। कालीकोट की नागमा में भूस्खलन के कारण लापता हुए लोगों के शव हुए बरामद। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। इसी के साथ हिन्दी चार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।